आज से 3 दिन तक श्री नित्यानंद त्रयोदशी के उत्सव निमित्त ये कार्यक्रम 3 दिन का करने वाले हैं। खास कोल्हापुर सेंटर के लिए ये नित्यानंद त्रयोदशी और भी ज्यादा महत्व लेता है, क्योंकि एक साल पहले हमने श्री श्री निताय गौरचंद्र को हमारे मंदिर में आमंत्रित किया, तो ये श्री श्री निताय गौरचंद्र का पहला सालगिरह भी है। इसीलिए हमने सोचा 3 दिन का ये उत्सव आज संक्षिप्त रूप में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा का महत्व जानने का प्रयास करेंगे। कल हरिओम नगर में श्री श्री निताय गौरचंद्र की शोभा यात्रा होगी और परसों सौभाग्यवश रविवार भी है, तो सुबह श्री नित्यानंद प्रभु के जीवनी और उनके शिक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे और शाम को भजन, अभिषेक, सुंदर नाटक आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और कुछ दो शब्द चर्चा भी करेंगे और कीर्तन महाप्रसाद। कुछ दिन पहले परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज का प्रथम तिरुभाव दिवस जनवरी 25 तारीख को पिछले साल उन्होंने मुंबई के भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में अपना शरीर त्याग किया था, तो उनके शिष्य राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे उनका पहला तिरुभाव तिथि उत्सव मनाने के लिए। उनके एक शिष्य हैं कालचक्र प्रभु, वो आए थे और वर्णन कर रहे थे किस तरह से महाविष्णु स्वामी महाराज बहुत जोर देते थे भागवतम के अध्ययन, काफी। और उनके शिष्य उस दिन सुबह का कार्यक्रम हुआ, भागवतम हो गया और 10 से 4:30 बजे तक सारे शिष्य बैठकर भागवतम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। और उनका अध्ययन का बहुत सुंदर तरीका है, एक श्लोक लेते हैं उसको अच्छे तरह से रमण करते हैं, उसमें उसका आस्वादन करते हैं, केवल श्लोक को गाते हैं और उसके बाद उसका तात्पर्य पढ़ते हैं और आपस में चर्चा करते हैं। इस तरह से उन्हें आस्वादन करना चाहिए भागवतम और भगवान की लीलाओं का श्रवण। तो बता रहे थे भागवत में एक श्लोक है जहां शौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी में को कहते हैं, सूत जीव समाह सौम्य शाश्वतीर विशदम यशः यस्त्वं शमशति कृष्णस्य मर्त्यानाम अमृतम हीनः। कि हे सूत गोस्वामी, आप बहुत लंबी आयु जिए और शाश्वत यश प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि हमें आप भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला कार्यकलाप आप श्रवण करा रहे हैं और भगवान की जो लीला है ये अमृत के प्रवाह जैसा है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। गीता में भी भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य। ये प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय का 11वां श्लोक है। इसके तात्पर्य में वो बता रहे थे, मतलब किस तरह से वो लोग आस्वादन करते हैं भागवतम का। बोले इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं क्यों सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए इस लीला को और कैसे सुनना चाहिए। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, ये तो हमने सुना है। अभी हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर में दशम स्कंद चल रहा है, अभी पूतना वध का लीला है। तो उस समय बता रहे थे कि ये पूतना वध हमने 50 बार सुना होगा कम से कम, 50 क्या, काफी बार सुने होंगे हम और सुनाते भी हैं लोगों को, पर क्या हम उसको आस्वादन किए हैं, थोड़ा गहराई में गए हैं, उसको समझे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में, इसीलिए जितना हम भगवान के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करेंगे, जैसे गीता और भागवत में वर्णन किया गया है, उतना हम भगवान के दिव्य स्वभाव को जानेंगे। जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म और कर्म दिव्य है, उसको सुनना चाहिए। सुनकर क्यों सुनना चाहिए, उसमें उनके गुण प्रकट होते हैं, भगवान के गुण प्रकट होते हैं। तो जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे और भगवान के गुण जो उन लीलाओं के द्वारा प्रकट होता है उस पर ध्यान करेंगे, तो क्या होता है, आध्यात्मिक प्रगति निश्चित रूप से हम करेंगे, निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। और इसका सबूत क्या है, भागवत में ही है। फिर उन्होंने 12वें स्कंद का 12वां अध्याय 48, 49 और 50 ये तीन श्लोकों के बारे में चर्चा करके बताया, जहां सुखदेव गोस्वामी खुद सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रम भ्रमिवाति वातः। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी इसको दोहराएं, कम से कम आज जब उनके चरण चिन्हों पर हम चल रहे हैं महाविष्णु महाराज की कृपा से थोड़ा भागवत में प्रवेश करेंगे, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए और सिर्फ इसको आस्वादन कीजिए। बोले भागवत सिर्फ गाते रहो तो भी चलेगा, सिर्फ एक श्लोक तुमको मालूम है उसको दोहराते रहो, प्रवेश करो उसमें। संकीर्त्यमानो
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 भगवान अनंतः भगवान अनंतः श्रुतानुभावो श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम व्यसनं हि पुंसाम प्रविश्य चित्तं प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः
संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः वो बता रहे थे कि एक श्लोक को भी अगर श्रद्धा पूर्वक समझ ले श्रवण करके और उतार ले जीवन में तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे तो ये श्लोक कहता है भगवान के लीला का संकीर्तन और श्रुतानु श्रवण, भगवान के लीला का गुणगान और भगवान की लीला का श्रवण। परीक्षित महाराज ने सुनकर अपना जीवन सफल किया, सुखदेव गोस्वामी ने बोल के अपना जीवन सफल किया। संकीर्त्यमानो यानी सही तरह से गुणगान करना, जैसा मतलब परंपरागत, अगर हम भगवान की लीलाओं को एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा में आए हुए तरीके से केवल जैसा है वैसा गुणगान करेंगे। संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, भगवान जो अनंत है, उनके नाम अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है, सब कुछ अनंत है। तो संकीर्त्यमानो एक सही तरीके से उनका गुणगान करना। श्रुत अनुभावो, अनुभाव मतलब उनकी शक्ति, लीला के द्वारा उन्होंने अपना दिव्य शक्ति प्रदर्शित किया है। तो श्रुतः, श्रुतः मतलब श्रवण करने से, श्रुतः अनुभाव, तो भगवान की सुंदर लीलाओं का गुणगान और भगवान के सुंदर लीलाओं का श्रवण। तो क्या होता है, व्यसनम, व्यसनम मतलब दुख कलमश। हर एक व्यक्ति संसार में दुखी है इस माया के वश में आने के कारण और माया के बद्ध होकर कार्यकलाप करने के कारण। मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान, उसकी सारी आशाएं निराशा में परिवर्तित हो जाती है। मोघ कर्माण उनके सारे कर्म जो किस लिए कर रहा है, न सिद्धि ममापनोति न सुखम न पराम गति, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, वो मनमानी कर रहा है तो वो सुखी नहीं होता। तो ऐसे व्यसनम ही पुंसाम, तो व्यसनम बहुत सारे अनर्थ हैं हमारे हृदय में। भागवत कहता है, शुरुआत में भी है, नित्यम भागवत सेवया तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च कौन सा है वो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो अभद्र, तो संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम। व्यसनम जो उसका सारा दुख है, क्या होता है सुनने से, कैसे होता है ये उसका दुख, प्रविश्य चित्तम, क्योंकि भगवान के शब्द परम सत्य होने के कारण उनसे अभिन्न है। तो जब ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं इन शब्दों को, इन शब्दों के अंदर इतनी शक्ति है, और ये क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भागवत भगवान से अभिन्न है, तो वो जब कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करती हैं, प्रवेश चित्तम, डायरेक्टली कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं आपके हृदय में। जिस हद तक जो प्रवचन करता है वो परंपरागत उसको प्रस्तुत कर रहा है, और जिस हद तक श्रोता ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं, उस हद तक एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण कानों के द्वारा उसके हृदय में प्रविश्य कर्ण रंध्रेण, उसके कर्ण के रंध्रों से प्रवेश करके हृदय में प्रविश्यमानो प्रविश्य चित्तम, उसके चित्त में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से मग्न से ध्यान से सुन रहा है। विधुनोति अशेषम, विधुनोति मतलब धो देते पूर्ण रूप से, विधुनोति अशेषम, अशेषम मतलब पूर्ण रूप से। हाँ, ये और एक चीज है, उन्होंने कहा हर बार एक ही शब्द का दूसरा दूसरा अर्थ बताते हैं प्रभुपाद, और बोले इसीलिए श्लोक का उच्चारण करना और श्लोक के शब्दार्थ को पढ़ो। महाविष्णु महाराज 91 साल में गुजरे वो, और 70-71 साल में वो कृष्ण भावना में अपना लंदन में वो कृष्ण भावना में आए वो। हालांकि वो डायरेक्टली प्रभुपाद के शिष्य नहीं है, प्रभुपाद के शिष्य थे, संन्यास सब बाद में लिए, पर एटलीस्ट 70 के साल में शायद वो आए, और उसमें विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे वो, और वहां के लंदन के पूरे यूके के गुजराती कम्युनिटी जो है वहां के अध्यक्ष थे वो। और वो कैसे संपर्क में आए, सिर्फ उन्होंने लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ऐसे चलते जा रहे थे, उन्होंने देखा ये भक्त लोग एकदम नौजवान 18-19 साल के एकदम शेविंग किए चमकते हुए भक्त हरिनाम कर रहे हैं। ये गौर निताई की कृपा है, ये एक्चुअली नित्यानंद प्रभु की कृपा है। सिर्फ दर्शन से जिस व्यक्ति के हृदय शुद्ध मतलब तैयार है, जहां बीज मिला तुरंत खिल उठता है, वो तैयारी थी उनके अंदर। सिर्फ उन्होंने भक्तों को देखा संकीर्तन करते हुए, तुरंत उनके पास गए, बोले बीटी जी लिया उनसे, एक एड्रेस लेके मंदिर आए, फिर पता चला कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं, प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप जल्द से जल्द संन्यास लेकर भागवत का प्रचार कीजिए सीधा पहले। वो बोल रहे थे जैसे प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महान ने कहा था, मैं उस समय नहीं किया, बहुत लेट हुआ। इस तरह से उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको लिया, और उनके क्योंकि अध्यक्ष थे वो, प्रभुपाद जी को गुजराती समाज में एक कार्यक्रम करके उनको बुलाया, प्रभुपाद ने लेक्चर दिया वहां, और उसके बाद प्रयास कर रहे, धीरे धीरे जिम्मेदारी थी उनकी तो धीरे 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 करके उनके सब घर 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 की जिम्मेदारियां धीरे धीरे सब किए, और मंदिर में आके ज्वाइन किए, न्यू भक्त। और ये 17-18 साल के जिनको कुछ आता नहीं, थोड़ा बहुत जानते बस, वो लोग ऑर्डर देते थे, ये करो वो करो, जाओ ऐसे करो ऐसा करो। इतनी नम्रता पूर्वक उनके वहां रहकर उन्होंने सेवा की। हर रोज उस समय अभी जो वहां है वो वहां नहीं था मंदिर, पिछले वाले जगह में कौन सा स्ट्रीट नाम भूल गया, वहां था, वहां थे वो, और हर रोज मंदिर में आके बैठते थे, मिनिमम 4-6 घंटा भागवत पढ़ते थे, प्रभुपाद जी का भागवत। तत्पश्चात उन्होंने संन्यास लिया, और उनका थोड़ा जीबीसी में डिस्कशन हुआ क्या गुरु बन सकते, क्योंकि वो प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य नहीं थे, और राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे जैसे गौर गोविंद महाराज, हालांकि वो सबके साथ थे पर बहुत ही प्रगति किए थे उस समय की जो भक्तों के तुलना में, और इसीलिए कई लोग उनको उनकी एक्चुअली महिमा को समझ नहीं पाए। ऐसे महाविष्णु महाराज भी और उनके शिष्यों से सुनने से उस दिन जब मैं सुना, और एक है सिंगापुर के टेंपल प्रेसिडेंट है वो देवकीनंदन प्रभु, वो भी जब प्रवचन देते हैं भागवतम का, महाविष्णु महाराज के कोई भी शिष्य जब वो प्रवचन देते हैं, एक श्लोक को लेते और घंटों घंटों बातचीत करते उसके ऊपर, इसको कहते हैं उसमें एब्जॉर्प्शन, पूर्ण रूप से मग्न, मतलब उसका चूस चूस के एक्चुअली रस लेते हैं। श्रीमद भागवतम रसमालयम, एक्चुअली एक एक शब्द को भी वो बता रहे थे, अभी बोलूंगा मैं बाद में बताऊंगा, ये पुतना का लीला, बोले क्या 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 सुन क्या समझा, कौन सा ये पुतना का हमने सुना है, कौन सा रस आता है, आई मीन कौन सा गुण भगवान का प्रकट होता है पुतना लीला से, वात्सल्य, दया, करुणा। तीसरे स्कंद भागवत में आता है, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। जब उद्धव इनसे मिलते हैं विदुर से, और तब जी भी बोलने लगते हैं, अहो बकीयम, उसको भी हम सबको गवाए वो कम से कम 10 मिनट तक, बोले इसका आस्वादन करो, अहो बकीयम स्तदकालकूटम जिघाम सया पाय यदा दसाध्वी, लेभे गतिम धात रुचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो भगवान के कार्यकलापों से उनके गुण उभर आते हैं, उनके कार्य जो किए, उन्होंने जो कार्य किया तो उस कार्यों से उनके गुण नजर आता है, तो उस गुण को समझो और आस्वादन करो। अरे उसकी शरण जाके और किसकी शरण जाओगे, जो पुतना मारने आई भगवान को, हजारों बच्चों को मार दी थी वो ब्रज में, और कृष्ण को मारने आई, उसका स्तन पान करके उसको माता का स्थान दिया, कम वा दयालु। तो उस क्रिया को सुनने से, कर्म को सुनने से, जन्म कर्म च में दिव्यम, उसको अगर ध्यान से सुनोगे तो भगवान के गुण समझ में आएंगे, और एक बार उनके गुण समझ में आ गए तो उनकी शरण छोड़ के और कहां जाएंगे हम लोग, क्यों नहीं लेंगे उनकी शरण। ऐसा दयालु व्यक्ति, ऐसा मालिक, जो एक बार उनकी कुछ सेवा किया हो, आप भूल जाओ, सेवक भूल जाता है पर भगवान नहीं भूलते, पिछले जन्म में तूने एक बार किया था कुछ, और उसका करोड़ों गुना ज्यादा बख्शीश देते हम। इस दुनिया का पूरा विरुद्ध, इस दुनिया के मालिक कैसे, ज्यादा से ज्यादा काम लेना, कम से कम पैसा देना, और ढूंढते रहना, थोड़ा गलती किया तो उसको 50 बार सुनाना, 4 साल पहले तूने ऐसा किया था मालूम है, अच्छे काम भूल जाते, बुरे काम को भूलते नहीं, जिंदगी भर उसको याद दिलाते रहते। और कहां भगवान, उसकी सारी गलतियां भूलकर जो एक अच्छा काम किया, थोड़ा स्तनपान कराने आई थी, पूरा विश किया, थोड़ा दूध निकला कहते उसमें, क्यों दूध निकला, क्योंकि भगवान की सुंदरता देखकर, और क्योंकि वो स्तन पान करा रही थी, कहीं तो थोड़ा उसका थोड़ा वात्सल्य भाव आ गया, इसीलिए थोड़ा दूध निकला, शायद कुछ बूंद, इतना सारा विष, थोड़ा सा दूध, और उसके बाद प्राण ले लिए, और सिर्फ वो चीज देखा, और सब चीज, जैसे वैष्णव सारग्राही होते हैं, एक भक्त के, एक व्यक्ति के कुछ अच्छे गुणों को देखते, थोड़ी सी कुछ अच्छे गुण, और उसको देख के, उसको लेके, उसको थोड़ा, जैसे चिंगारी को हवा मारने से धड़कती अग्नि निकलती है, वैसे उसको थोड़ा हवा मार के भड़काते, और दूसरी चीज को नहीं देखते, छोड़ो छोड़ो, वो तो सत्य है, देखने जाओगे तो कलयुग जो है, दोष निधे राजन, इसीलिए परीक्षित महाराज भी सारग्राही थे, कलियुग को क्यों उन्होंने आश्रय दिया, लोग पूछते हैं, मालूम था कि कली एक नंबर का रैस्कल था, इसको क्यों आश्रय दिया। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, पर कलियुग में एक खासियत है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। तो कलियुग महाराज परीक्षित सारग्राही थे, उन्होंने कलयुग के सारे दोष में से एक अच्छी चीज देखा, इसीलिए उसको आश्रय दिया। बोले तू आएगा तो कम से कम एक चीज आएंगे, महाप्रभु आएंगे, और इस कलयुग में जो अच्छी अच्छे कुछ करने का सोचेगा भी तो उसका फल मिल जाएगा, पर बुरा जब तक करेगा नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। वर्णन है, भागवत में वर्णन है, कलयुग में बुरे कार्य एक्चुअली करने से उसका परिणाम मिलता है, करने तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा, पर अच्छे कार्य सिर्फ सोचोगे, कल मैं एकादशी में ना निर्जल करूंगा, फिर दोपहर को 12 बजे तकलीफ हो गया, दवा के खा लिया पी लिया, फिर भी पूरा पालन करने का फल मिल गया, क्यों? क्योंकि निश्चय तो किया था ना तुमने, सोचा था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे और बाद में करते रहे, हम सोचते हैं मुझे वृंदावन जाना है, एक ना एक दिन जाना है, दर्शन करना है, फल मिल गया आपको, अगर प्रामाणिक इच्छा थी। ये कलयुग का लक्षण है, ये सारग्राही परीक्षित महाराज ने देखा, ले लिए उसको, तुरंत ले लिए। तो प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम, अशेषम मतलब पूर्ण रूप से, यहां वो बोले पूर्ण रूप से, अशेषम मतलब हमको लगता है अनंत, कोई किसी का शेष नहीं है, बोले या नहीं, एंटायरली, इसका अनुवाद यहां एंटायरली, पूर्ण रूप से, कैसे, यथा तमो अर्कह, अर्कह मतलब सूरज, ये कहां आता है, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म, प्रभु ऑफ कर दो माइक को, तो क्यों ऐसा आवाज आ रहा है, बहुत या तो क्या वो, हाँ, कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञान पुराण अर्कह अधुनोदित, अर्कह मतलब सूरज, आपको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं, अलग से भागवत पढ़ोगे संस्कृत सीख जाओगे, और इतना संस्कृत काफी है, उससे ज्यादा विद्वत्ता जरूरत नहीं है, जितना भागवत पढ़ने के लिए प्रभुपाद की जो तात्पर्य में शब्दार्थ, प्रभुपाद ने इतना तकलीफ उठा के शब्दार्थ क्यों लिखा, मालूम था समय कम था तो और सो दूसरे शास्त्र कर सकते थे, शब्दार्थ क्यों लिखा, क्योंकि चाहते थे कि हम उन शब्दों पर ध्यान दें, भागवत भगवान से अभिन्न है, उन शब्दों का आस्वादन करेंगे तो एक्चुअली रसमालयम, रस का आस्वादन करेंगे। तो प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेष, पूर्ण रूप से धो डालते हैं सारे अनर्थों को, यथा तमो अर्कह, दो उदाहरण दिया गया है, जैसे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, अगर ध्यान से सुनोगे तो ये शब्द जो कृष्ण से अभिन्न है, अंदर जाएंगे और अंदर जाके वो सूर्य प्रकाशित हो जाएगा, अंदर कृष्ण आ गए, और जब कृष्ण आ गए अंदर तो अंधकार वहां नहीं रहेगा, अनर्थ नहीं रहेंगे, माया वहां नहीं रहेगी, इसी तरह से शुद्ध हो जाता है। पर दुर्भाग्यवश हम सूरज में आते फिर गुफा में घुस जाते, इसीलिए नित्यम भागवत सेवा, हर रोज जाके संग में, कभी कभी बोलते हैं ना कुछ लोग जो बीमार है, बोलते सूरज में जाके बैठो, सुबह सुबह सूरज की किरणें आना चाहिए, तेल लगा के बैठो थोड़ा, सूर्य की किरणें जो है इस तरह से नित्यम भागवत सेवया, हर रोज जाके, हम लोग बीमार अवस्था में अंधकार में बैठ बैठ के, इतना हमारा समस्या है, सूरज गया तो डर के मारे अंदर आ जाते हैं, आंख खोल भी नहीं पाते उल्लू के जैसे तो यथा तमो अर्कह, जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तो तमो अंधकार दूर हो जाती है और अभ्रम यानी बादल, ये अर्जुन भी कहता है मेरा जैसे एक बादल, एक छोटे से टुकड़ा बादल का इधर से उधर जाता है और इधर भी नहीं उधर भी नहीं, घर का ना घाट का, ऐसे हो जाता है। भागवत में, भगवत गीता में वो श्लोक है, किसी को मालूम है वो श्लोक? भ्रम अभ्रमा ऐसा सब कुछ है, याद नहीं आ रहा अभी। इस तरह से हमको संस्कृत सीखना है, इस तरह से प्रवचन देते वक्त भी आप देखिए शब्दार्थ पे ध्यान देंगे तो वो शब्द कहां कहां आता है उस पर सिर्फ ध्यान करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तब आस्वादन कर रहे हैं, ये शब्द कहां कहां उपयोग हुआ है भागवत में, गीता में कहां हुआ है, शास्त्रों में कहां हुआ है, पुराणों में कहां हुआ है, उसका शब्द वहां किस तरह से लिया गया है। अभ्रम इव अति अतिवात, अभ्रम इव अतिवात, वात मतलब हवा, अतिवात मतलब तूफान। जब तूफान आता है तो बादल उड़ जाते हैं, बादल टिकते नहीं। अब देखते बादल कैसे, कभी कभी मैं कुछ और काम नहीं रहता, बैठे रहता छत के ऊपर जपा करते करते, आंख बंद किया तो नींद आता है, तो आंख खोल के ऊपर देखता रहता हूं क्योंकि इधर उधर देखा तो मन अधूरा रह जाता है। पर मन ऐसा है वो बादल को देख, अरे हिल रहा है बादल क्योंकि बिल्डिंग को देख रहा हूं, ऐसा लगता है बिल्डिंग इस तरह जा रहा है, बिल्डिंग तो नहीं जा सकता, यानी बादल ऐसे जा रहा है। फिर उसके बारे में सोचते सोचते हरिनाम भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे बादल कितनी रफ्तार से चलती है, बादल प्लेन में जाते वक्त मैंने देखा है, हमारे साथ साथ आता रहता है वो बहुत जोर से। तो जैसा सूरज अंधकार को दूर करता है और जैसा तूफान जैसे हवा बादल को उड़ा देती है, इस तरह से प्रविश्य चित्तम विधुनोति अशेषम यथा तमोर को अभ्रम इवाति वातः। फिर ये श्लोक पक्का क्यों नहीं होगा? आधा तो समझ में आ गया, और संस्कृत और सारे भारत की जो भाषाएं हैं वो तो संस्कृत उनकी मां है, ये अंग्रेजी सब दूसरी भाषा है, पर ये जो भाषा है भारत की जो भी, उसकी जननी जो है मूल रूप से संस्कृत है। तो एक बार और एक बार उसका उच्चारण करेंगे, बाद में जाएंगे अगले श्लोक। अभी थोड़ा ध्यान कीजिए इस श्लोकों में और एक एक शब्दों में, क्योंकि हम समझ गए हैं थोड़ा बहुत। संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्, प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषम् यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः। और फिर आगे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां एक खास शब्द आता है जिस पर उन्होंने ध्यान जोर दिया, जिसके लिए ये जो उत्सव मनाते हैं हम लोग, और हर एक उत्सव में जिस व्यक्ति का या तिरोभाव या आविर्भाव चर्चा करते हैं उसके दिव्य जन्म और कर्म के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, है कि नहीं? जिसका भी आविर्भाव तिरोभाव है उस व्यक्ति के कार्यकलापों के, और कार्यकलापों कहां से आए? उनके गुणों से उत्पन्न हुए कार्य। जनरली एक प्रसंग में हमारी प्रतिक्रिया अलग होती है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, जो मुक्त आत्मा है वो इस परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करते हैं, उनका गुण उभर आता है लीला के द्वारा। तो उस गुण का आस्वादन करेंगे तो क्या होगा, ये श्लोक बताता है। थोड़ा लंबा श्लोक है। मृषा गिरस्ता ही असतिर असत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम तदेव पुण्यम भगवद गुणोदयम। अब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत सुनने से, मृषा गिरस्ता ही असतिर असत कथा। मृषा मतलब झूठा, माया, जैसे मृग तृष्णा, रेगिस्तान में जल दिखता है पर जल नहीं है, वहां पानी नहीं है, तो मृषा, मृषा यानी फॉल्स, झूठा। मृषा गिरस, गिरह यानी वचन, ऐसे वचन ताही असतिर, असतिर यानी असत्य, असत कथा यानी क्षणभंगुर। स्वाभाविक रूप से हम लोग कुछ ऐसे पुस्तक, ऐसे विषय, ऐसे ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं इस दुनिया में बद्ध जीव, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। कौवे जैसे, भागवत दूसरी जगह कहता है ना, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा नयद वचह, वचह ऐसे शब्द चित्रपदम हरेर यशो, बहुत अच्छे से रचे गए हैं, बहुत अच्छा गाया है, फिल्म सॉन्ग्स हुए, कितने सुंदर से उन्होंने राइमिंग बनाया है, आता हूं मैं जाता हूं करता हूं मैं सोता हूं, इस तरह से घुमा फिरा के अच्छे तरह से ये लोग गाना बनाने वाले इतने सुंदर से बनाते हैं कि लोग उसे आकर्षित हो जाते हैं, वो ट्यून से या वो शब्दों से आकर्षित हो जाते हैं और उसको सुनते रहते सुनते रहते सुनते रहते। पर तद वायसम तीर्थम उशंतिमा न यत्र हंसा निरमंतु शिक्षया, पर वो लाभ नहीं है, वो कानों में प्रवेश करते हैं तो हमारे काम वासना को जागृत करते हैं और हमारे अज्ञान को बढ़ाते हैं। मैं शरीर हूं और जीवन का उद्देश्य है भोग करना, शब्द वही है, ए टू जेड वही अक्षर है, अ से ह क्षत्रज्ञ, पर उनका कॉम्बिनेशन जो है वो केवल माया यानी क्षणभंगुर और असत जो शाश्वत नहीं है और जो झूठ है, ये सब ये आनंद नहीं देता, सचमुच में सुख नहीं देता, पर प्रॉमिस है कि ये करोगे तो तुम हो जाए। अरे आज तक पिछले किसी को नहीं मिला, करोड़ों जन्मों से नहीं मिला, सतयुग से लोगों ने प्रयास किया, हिरण्यकशिपु जैसे लोगों ने, उनको जो नहीं मिला, चिंता बढ़ती रही, सुख नहीं मिला, हमको कैसे मिलेगा, पर फिर भी ये माया में पड़ जाते हैं। वो प्रॉमिस देते हैं एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि ये कर लो तुम सुखी हो जाओगे, हम पढ़ते रहते हैं उसको, न्यूज़पेपर हो या फिल्मी मैगजीन हो या स्पोर्ट्स मैगजीन हो, धनम जनम सुंदरीम, ये करोगे तो तुमको यश मिलेगा, ये मिलेगा तो धन बढ़ेगा, और हमें फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं मृग तृष्णा जैसे, मृग जैसे भागता है, हाँ इधर मिलेगा इधर मिलेगा, पर मृषा वहां कुछ है ही नहीं, उसको पढ़ के उसके पूरा जीवन उसमें डाल देते, इन्वेस्ट कर देते हमारा पूरा पूरा इंश्योरेंस का पैसा उधर डाल देते। तो मृषा गिरस्ता ही असतिर असत कथा न कथ्यते यद भगवान अधोक्षजः। अगर उसमें भगवान जो अधोक्षज हैं, जो दिव्य हैं, जो इस आंखों के परे हैं, वो दिव्य हैं, वो अगर वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं उसमें नहीं है, उन शब्दों में अगर भगवान अनंत के बारे में, जैसे भागवत में दूसरी जगह आता है, तद्वाक विसर्गो, तद्वाक विसर्ग, विसर्ग मतलब सृष्टि, उस वचनों की सृष्टि, तद्वाक विसर्ग जनता अघ विप्लव, अगर ये शब्द किसी के कान में गया तो उसके हृदय में क्रांति होती है, जब क्रांति होता है तो बदल आता है, जब लोग तंग आ जाते हैं एक प्रकार के सरकार से, तो क्रांति करके उस सरकार को फेंक कर नया सरकार स्थापित करते, वो क्रांति है। इसी तरह से ये जो शब्द हैं कृष्ण के संबंध में भक्तों से बोले हुए शब्द, ये शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि अगर ध्यान से सुने, अगर श्रद्धापूर्वक सुने, प्रामाणिकता से, बड़ी गंभीरता से, तद्वाक विसर्ग जनता अघ, जो पाप से भरा हुआ है, विप्लव, उनके हृदय में क्रांति हो जाती है और पुरानी आदतें फेंक कर नई आदतें आ जाती हैं, पुराने विचार फेंक कर नए विचार आ जाते हैं, पुराने मूल्यों को फेंक कर नए मूल्य आ जाते हैं जीवन में, और यही नित्यानंद प्रभु की कृपा है जगाई माधाई जैसे लोगों का। और यहां देखेंगे जो कोई दूसरे अवतारों में नहीं हुआ, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुई। तब हमको समझ में आएगा नित्यानंद त्रयोदशी क्यों मनाते हैं। ये दिन सिर्फ आना है, बैठ के सुन के जाना है, प्रसाद खा के जाना नहीं, इसका पूरा लाभ, जैसे पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे, हर एक राष्ट्र में उन राष्ट्रों के जो नेता हैं उनके जन्म दिवस या तिरुभाव दिवस या उनके कार्यकलाप, उसका एक दिन होता है, उस दिन छुट्टी दी जाती है सरकार, गांधी जयंती अक्टूबर 2, नवंबर 14। क्यों करते हैं ऐसा? आज जो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं स्वतंत्रता, पहले हम स्वतंत्र नहीं थे, पर इन लोगों ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे हमको स्वतंत्र दिया, तो उस दिन एक तो कृतज्ञता प्रकट करना, वो उनकी कृपा नहीं होती तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, गुलाम होते, और उनके जीवन से प्रेरणा लेना और ऐसा काम नहीं करना फिर से गुलामी आ जाए हमारे जीवन। इसीलिए देश उन नेताओं के दिन छुट्टी रखते हैं, पर दुर्भाग्यवश उसी दिन छुट्टी होने के कारण सब लोग दारू पी के सब अपना योजना बनाते हैं, किधर जाने का, कौन से पिकनिक एरिया में जाने का, पहले से 3 महीना पहले ही बुकिंग हो जाता। स्वतंत्र दिवस वो झंडा फहराने वाला हेडमास्टर एक ही होता है, कोई बच्चे नहीं आते। पर वही वैष्णव संप्रदाय में जब तिरुभाव और आविर्भाव या कोई महत्वपूर्ण दिन प्रभुपाद का, इस्कॉन का स्थापित करना, जिस दिन प्रभुपाद अमेरिका गए, वैष्णव कैलेंडर में आया है, जिस दिन वो वहां झंडा फहराए, जीत हुई, राम विजयोत्सव बोलते हैं ना, इस तरह से प्रभुपाद जी का विजय उत्सव 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जब खोला, वो झंडा जो गाड़ा, वो झंडे से कितने लोगों का लाभ हुआ है सोचिए, कैसे किए, क्या क्या तकलीफ उठाए, तब उस चीज को हम लोग अवज्ञा नहीं करेंगे, अति परिचय अवज्ञा, उसको बार बार सुनना चाहिए, कितना तपस्या किया है हम लोगों को, जो मिला है ये देने के लिए कितने लोगों ने कितना तपस्या किया है, और अभी हमारी जिम्मेदारी है जो देने के लिए उन्होंने उतना तपस्या किया है उसको गंवाओ मत। माता पिता कोई आया नहीं, मैंने देखा है एक आदमी घर से भाग के आता है 15 साल की उम्र में, रोड के बगल में एक पैसा क्या बोलते हैं छोटा सा चाय का दुकान खोल के परिश्रम कर करके करोड़पति बनता है, पर उसके बच्चे जो हैं उस पैसे को मूल्य नहीं समझते, उड़ा देते। धनी बाप का इकलौता बेटा, बहुत दुख होता है, अरे जिसलिए मैं इतना कमा तेरे लिए दिया और तू उड़ा रहा है इसको, तो ये ना हो। इसीलिए ये जो दिवस है, ऐसे दिवस जब चर्चा करेंगे हम लोग, ओहो क्या किया ये, क्या देने के लिए दोनों आए, भाई आए, परमा करुणा पहुं दुई जननिताय गौरचंद्र, जो देने के लिए आए और जो दिए, और उसकी पराकाष्ठा, उसकी उनकी दया की जो पराकाष्ठा है, परमा करुणा, परम करुणा जो प्रकट किया जगाई माधाई का उद्धार, हमने देखा है, कई बार सुना है, पर गहराई में नहीं गए हम लोग, सोचे यमराज सुन के बेहोश हो गया। क्या जगह मतलब उद्धार हो गया, सुने बेहोश हो गए। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उसकी गंभीरता को हम नहीं जानते, इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। तो प्रविश जनता अघविप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, हालांकि उसको उच्चारण ठीक नहीं हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, क को त बोल दिया। कभी कभी प्रवचन में हम सुनते हैं प्रभुपाद जी बोलते वक्त सो रावण राम वॉज किल्ड, और रावण के बदले राम बोल दिया है, ऐसा कैसा? भाव को देखना है, जिस व्यक्ति ने बोला है भले उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये हो, मूर्ख व्यक्ति उसमें अटक जाता है। नामानि अनंतस्य यशः अंकितानि, वही भगवान अनंत संकीर्त्यमानो भगवान, नामानि अनंतस्य उस अनंत भगवान के, नामानि अनंत यशः उनके अगर यश का अंकित हुआ है वहां, अगर उसके बारे में कहा गया है, शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति उनको गाते हैं, और गृणन्ति उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, कौन? साधव, जो साधुगण हैं, सारग्राही होने के कारण बाहर के एक पुस्तक के कवर को ना देखकर अंदर क्या है वो देखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित के रूप में ईश्वरपुरी ने अपना ग्रंथ दिया और बोले इसको ठीक करो तुम, तो निमाई पंडित ने बोला नहीं, शुद्ध भक्त के कोई भी कार्यकलाप में कोई दोष नहीं है, ये दोष देखना मूर्खता है। पर फिर भी उनके कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और उसमें एक दिखा, एक दिखा है। और ईश्वरपुरी ने सुना, अगले दिन बोले नहीं वो दोष नहीं है, एक्चुअली वो सही है। हां प्रभु आज तक कभी हार नहीं माने, केशव कश्मीरी को भी झुका दिया, पर जब केशव अपना ईश्वरपुरी ने बोला, बड़े नम्रता से स्वीकार किया, बोले आप जो बोल रहे सही है, चाहते तो महाप्रभु उड़ा सकते थे, उसको भी घुमा सकते थे, पर जानते थे भक्त है, मूर्खता है अगर इसमें मैं भाव को न देखकर बाहरी सिर्फ पैकेजिंग को देखूंगा। तो महाप्रभु खुद दिखाए हमको किस तरह से एक सारग्राही व्यक्ति हर एक विषय से सार लेता है, न केवल बाहरी रूप में अटक जाता है। कभी कभी हम भी अटक जाते हैं बाहर के रीति रिवाज, उसने ऐसा नहीं किया, देखो तिलक ऐसा टेढ़ा लगाया, बिना तिलक लगाए घूमता है, ठीक है वो जाने, वो भगवान जाने, पर कभी कभी बाहरी चीजों में अटक जाते हैं, सार ग्रहण नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक हंस जैसे वैष्णव और दूसरे गधे जैसे वैष्णव। अरे गधे जैसे वैष्णव, वैष्णव बोलते हो गधा बोलते, एक है सारग्राही दूसरा है भारवाही। सारग्राही मतलब हर एक रीति रिवाज में उसका सार क्या है वो ग्रहण करता है और वो फंस नहीं जाता, हो अरे ऐसा कैसा उसने ये नहीं किया, झुका नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाहरी चीजों में अटकता नहीं है, सार ग्रहण करता है वो। और भारवाही मतलब रीति रिवाजों के बोझा में अटक जाता है वो और दोष देखते ही रहता है, हर एक में दोष देखता है, इसने ऐसा नहीं किया, ये देखो तीन बार के बदले दो बार आचमन करके अंदर घुस गया, ठीक है तुम मत करो, और हो सके तो अच्छी तरह से समझा के बताओ। अपराध का मतलब क्या, निंदा का मतलब क्या, जो दोष नहीं है वो दोष ईर्ष्या के कारण उसमें थोपना, उसको कहते निंदा। जहां जरूरी नहीं है ना समझते, उसकी भावना को ना देखते हुए केवल बाहरी कार्यकलापों में केवल दोष ढूंढना, निंदक हो जाते हैं। तो यस्मिन महा न कथ्येत भगवान अधोक्षजः तदेव सत्यम तदेव, जो शब्द भगवान के नाम रूप गुण लीला का गुणगान कर रहे हैं तदेव सत्यम, क्योंकि सत्युग में भी वो सही था आज भी वो सही है, और करोड़ों युगों के बाद भी वो सही रहेगा। तदैव सत्यम, भगवान गीता में कहते हैं सूर्य देव को मैंने करोड़ों साल पहले दिया था, आज वही चीज दोहरा रहा हूं अर्जुन, कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि ये सत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो तत्वदर्शी होता है हमेशा तत्व का वर्णन करता है, और वो तत्व जो है कभी बदलता नहीं, जो बदलता है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो बदलता नहीं है। भगवान सत्य है, जीव भगवान का अंश है, ये सत्य है। संबंध ज्ञान सत्य है, अभिधेय ज्ञान भक्ति, यही एकमात्र सत्य है। भगवान भी गीता में कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस सत्य का नाश कभी नहीं होगा। जो भक्तिमय कार्य आपने किया है वो कभी नाश नहीं होगा, वो तदैव सत्यम। दूसरे काम का फल मिलेगा आपको, स्वर्ग लोग जाओगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम, वो काम भी गया, काम करने वाला भी गया। पर आत्मा और भगवान के जो नित्य शाश्वत रिश्ता है, उस संबंध में किए हुए कार्य नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, घटता भी नहीं है वो, तदु एव सत्यम। तो ये जो वचन है भागवत के, ब्रह्मा जी ने चार श्लोक में सुना, नारद जी को विस्तृत से सुनाया, नारद जी ने व्यासदेव को सुनाया, उन्होंने सूत को सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, उन्होंने परीक्षित को सुनाया, उस सभा में सूत गोस्वामी थे, नैमिषारण्य ऋषियों को सुनाया। थोड़ा बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है साइज, चार श्लोक था और 4000 श्लोक हो गया, 18000 हो गया। पर तदैव सत्यम, जो तत्व का वर्णन हो रहा है, तदैव सत्यम तदु हैव मंगलम, तदु ही एव मंगलम, वही सचमुच में मंगलमय है, वही हमें सच्चा मंगलमय वातावरण प्रदान कर सकता है, अपने जीवन को मंगल बना सकता है, शुभ। तदु हैव मंगलम तदैव पुण्यम। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे दूसरा हाई ऊंचा पुण्य काम कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य काम है भागवत का कहना और भागवत सुनना, इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य काम नहीं है। तदैव पुण्यम। और अंत में ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको उन्होंने बहुत जोर दिया, तदैव सत्यम तदुहैव मंगलम तदैव पुण्यम भगवान गुणोदयम, भगवान गुण उदयम। अगर भगवान के गुण को सुनेंगे बार बार, जो उनके लीला के द्वारा प्रकट हुआ है, भगवान गुण उदयम, आपके अंदर भी वो गुण आने लगेंगे बिना प्रयास किए, केवल श्रवण मात्र से, केवल कीर्तन मात्र से। मृगारी के जीवन में हम देखते हैं, केवल हरिनाम से बड़े बड़े जीवों को आधा मारकर तड़पते देखकर आनंद लेने वाला व्यक्ति चींटी को मारने में हिचकिचाया, इतना दया कैसे आ गई, इतनी बुद्धि कैसे आ गई, इतना ज्ञान कैसे आ गया। भगवान गुणोदयम। सत्पुरुष से सत्वचन, सत्य यानी भगवान परम सत्य, जो परम सत्य के शरणागत हैं, ऐसे व्यक्तियों से सत्वचन, भगवान के बारे में जो वचन सुनेंगे, तो अपने आप उस व्यक्ति के गुण जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति के समुद्र जैसे गुण का एक बूंद भी अगर हम में आ गया, तो हमारा जीवन सफल। नित्यानंद प्रभु, कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल, अगर उनको उनके आविर्भाव दिवस या उनका जो लीला है, खास करके उस दिन जिस दिन वो आविर्भाव प्रकट हुए, खास कृपा करने के लिए, जन्म कर्म च में दिव्यम, उस दिन तो खास, पर हर एक दिन भी जब चर्चा करेंगे और प्रवेश करेंगे, जब नित्यानंद की प्रभु की कथा सुन रहे हैं, एक्चुअली नित्यानंद हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, और हमारे जैसे जगाई मदाई जैसे लोगों का परिवर्तन होगा। इसी शरीर में अगले बार हम लोग, अगले कल रविवार को चर्चा करेंगे, जगाई मदाई का उद्धार जगाई मदाई के मुख से सुनिए आप उनकी प्रार्थना। वो बताते हैं क्यों हमारा जो उद्धार है अजामिल के उद्धार से श्रेष्ठ है, कंस इन लोगों को यहां तक कि पूतना अगासुर बकासुर उससे भी श्रेष्ठ है, बोलते उससे भी श्रेष्ठ है और प्रूफ करके बताते हैं। वो ऐसे पियकड़ लोग ब्रह्म राक्षस प्रैक्टिकली, नाम के वास्ते ब्राह्मण पर कर्मों में असुर थे, पर उद्धार होने के बाद नित्यानंद प्रभु ने उन्हें गले लगाया। शास्त्र के आधार पर प्रूफ देके महाप्रभु को सुनाते हैं कि अब आप बच नहीं सकते, आप बादलों के पीछे छुपे हुए थे, अब आप आपकी जो सूर्य के जैसे प्रकाश है, आपकी जो कृपा है पूरी दुनिया जान गई, अब आप छिपा नहीं सकते, हम दोनों को देख के पूरी दुनिया जान जाएगी आपकी महिमा क्या है, अब तक आप छिपा सकते थे पर जब हम दोनों का उद्धार हो गया। कितना सुंदर से समझाते हैं, अजामिल ने तो कम से कम नाम लिया, कंस का उद्धार हो गया, कंस का उद्धार हुआ, भगवान ने मारा और उसको भगवत धाम ने मुक्ति मिली उसको, पर कंस का शरीर किसी ने छुआ नहीं, पापी है उसका। रावण मरने के बाद राम को बोलना पड़ा, नहीं नहीं अंतिम संस्कार करो बेचारा जो भी था मरने के बाद उसका दुश्मनी याद मत करो, कर दो विभीषण को बोल, नहीं चाहता था वो। उद्धार हुआ होगा भगवान ने, पर भगवान का स्मरण 24 घंटे करते थे कंस और रावण हिरण्यकशिपु 24 घंटे, पर हमने कभी नहीं किया, हमने अजामिल जैसे नाम नहीं लिया, पूतना का वध किया और मां का स्थान दिया, ठीक है वो तो शास्त्र पे जिसको विश्वास है उसको विश्वास है, किसने देखा मां का स्थान मिला, पर हम हमारा शरीर जिस शरीर को जिसको देखकर लोग गंगा स्नान करते थे अपने शुद्ध होने के लिए, आज हमें देखने के लिए लोग आ रहे हैं करोड़ों जन्मों से और अपने आप को पवित्र मानते हैं। गंगा र परश होइले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, आपने ऐसा बना दिया प्रभु हमको जिसको देखकर लोग गंगा में बिना कपड़े उतार के कपड़े के साथ स्नान करते थे, आज हमें ऐसा शुद्ध भक्ति आपने दे दिया है, आपके संग में ले आए हमको जहां ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं है, जिसके हृदय में लेश मात्र उसको प्रवेश नहीं है श्रीवास के आंगन में, वहां आपने आपके पार्षदों के बीच हमें ले आए, क्या कृपा है प्रभु आपकी। और आज भी हम जिंदे हैं, ऐसा नहीं कि मर के गया, शास्त्र में जिसको विश्वास है मां का स्थान मिला किसको मालूम, पर देख रहे हैं पूरी दुनिया देख रही, पूरी नवद्वीप देख रही है, अब आप नहीं छुपा सकते प्रभु। मार खे प्रेम दे, और हमने नाम लिया नहीं, हमने स्मरण किया नहीं, भले द्वेष से किया हो प्रेम से किया, स्मरण नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने, बल्कि मारा हमने नित्यानंद को, और मार खाने के बाद अरे अजामिल नाम लिया तो चार विष्णु दूत आए बस, पर हमने नित्यानंद को मारा, आपके पार्षद आपके पूरे परिवार के साथ हमको अंदर ले लिया कीर्तन में, अंग उपांग पार्षद। एक्चुअली आप देखेंगे जगाई मदाई के मुख से वो बोलते हैं, और ये ज्ञान कहां मिला, कहते हैं शुद्धा सरस्वती, दो प्रकार की सरस्वती भक्ति स्थान सर से ठाकुर समझाते हैं, शुद्धा सरस्वती और विद्धा सरस्वती। शुद्धा सरस्वती मतलब जो शब्द जिस व्यक्ति के मुख से निकले, जहां वो ज्ञान भगवान को समर्पित है, सरस्वती के प्रभु जो मालिक हैं वो भगवान है, जब ऐसे वचन हम बोलते हैं सरस्वती यानी ज्ञान या सरस्वती यानी कला, कला की प्रतिनिधित्व करती है वो कीर्तन, वो कीर्तन जहां भगवान उस कीर्तन के मालिक हैं, वो शब्द जहां हम स्वीकार करते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान की कृपा से, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्णार्पणमस्तु। पर विद्या सरस्वती वो सरस्वती या वो ज्ञान जहां हम भोक्ता समझते हैं। इसीलिए केशव कश्मीरी को सरस्वती ने उसका कृपा छीन लिया, मुख जैसा खड़ा हो गया, मुंह निकल नहीं रहा था। और उस दिन रात को जब सोया तो सरस्वती आई, बोले मूर्ख, आज तक जो मैंने, तू जब भी मुंह खोलता था तेरे जीवा पर बैठकर मैं बोलती थी गंगा के बारे में 100 श्लोक तूने तूफान जैसे बोल दिया, वो मेरा असली कृपा नहीं था। आज जो मैंने तुझे दिया वो मेरा असली कृपा है। क्यों? क्योंकि आज तू मेरे प्रभु से बातचीत कर रहा था जिससे मुझे ये सारी सब शक्ति आती है, और आज जब मेरे छीन लिया, तेरे मुख से मैं हट गई, ये मेरी असली कृपा है। तेरा अहंकार चूर हो गया, तू आज तक समझता था तू विद्वान है, नहीं ये मेरी कृपा थी, पर तू अहंकारवश, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम, आज मैंने तुम्हें असली कृपा दी है शुद्धा सरस्वती। तब जब आके पैर पड़ा और तब जब गुणगान करने लगा, उस समय शुद्धा सरस्वती बोल रही थी उसके मुख से। इस तरह से जगाई मधाई के मुख से उद्धार होने के बाद उनका शुद्धा सरस्वती बोल रही थी। तदैव सत्यम तदुहैव मंगलम तदैव पुण्यम भगवान गुणोदयम भगवत गुण उदयम। तो इस तरीके से ये जो हां, और फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़कर कहते हैं, क्यों सुनना चाहिए ऐसी कथाएं, भागवत कथा। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, इसको गाते हैं, बहुत सुंदर है, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तदैव रम्यम तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वत तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते यशोनुगीयते तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। कहते हैं तदेव, यानी वो शब्द जो भगवत भगवान के नाम गुण लीला का वर्णन कर रहे हैं, तदेव रम्यम, ये जो शब्द है रम्यम, रम्यम मतलब आकर्षित है, जो इससे एक बार आकर्षित हो गया, फिर जहां कौवे जैसा हंस जैसा व्यक्ति बन जाता है, और हंस कभी ये कॉरपोरेशन के डस्टबिन में नहीं बैठते हो, कौवे जैसे, जहां कौवे रहते वहां हंस नहीं है, जहां हंस रहते वहां कौवे नहीं। तदेव रम्यम, जो ऐसे शब्दों से आकर्षित हो गया एक बार, वो फिर कौवे जैसे जाके ऐसे पुस्तक या ऐसे काव्य या ऐसे ग्रंथ जिसमें मृषा गिरस्तावद असत कथा असतिर असत कथा, ऐसे में वो रुचि हो चली जाएगी उसको, परम दृष्ट्वा निवर्तते, देख कर ही नहीं। तदेव रम्यम रुचिरम, रुचिरम मतलब सही में उसको रुचि आएगी, क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम हो गया, अब भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला जो है उसमें रुचि आ जाती है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, और हमेशा नया लगता है वो, हर बार सुना अगली बार नया लगता है। देखिए दूसरे जो जो पॉलिटिशियंस का अभिभाव तिवर भतिरोभाव हमको सुना है उसका, उसने क्या किया वो क्या, पर हम वैष्णवों का सुनते हैं, हर बार सुनते हैं तो कुछ नया ही उसमें से आता है। हमारे ऊपर निर्भर है, उनका गुण जो है अनंत है जैसे आकाश, और हम पक्षी जैसे हैं, मच्छर जैसे हैं, तो थोड़ा आकाश को हम आस्वादन कर सकते हैं, मतलब कवर कर सकते हैं। थोड़ा छोटा पक्षी है चिड़िया जैसे, तो और ज्यादा आकाश को हम कवर कर सकते हैं। और पक्षी जो क्या बोलते हैं, ईगल गरुड़ जैसा हो तो और ज्यादा कवर कर सकता है। पर फिर भी यस्यांतम न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः, अनंत देव अपने अनंत मुख से अनंत काल से भगवान के एक लीला का भी वर्णन करके समाप्त नहीं हुआ उनका। तो ये हमेशा तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, हमेशा नया लगेगा ये। तदेव शश्वत, शश्वत मीन्स हमेशा के लिए, क्या मनसो महोत्सवम, ये महोत्सव है मन के लिए, जो मन इस भौतिक संसार की चीजों को पकड़ के रख रहा है कांच के टुकड़े जैसे, जिसके कारण सिर्फ खून बह रहा है, कट रहा है हाथ, उसके हाथ में अब ये मन को मनोहर लीला, भगवान के मन को हरने वाली जो लीलाएं हैं। तदेव शश्वत, शश्वत मतलब शाश्वत रूप से, मनसो महोत्सवम, मन के लिए महोत्सव है। तदेव यही शब्द और कोई दूसरे नहीं, देवी देवताओं के भी शब्द नहीं, तदेव मामेकम शरणम रजा मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव तदेव केवल हरि, हरि नाम हरि कथा। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम, नृणाम मतलब जन साधारण जो नर लोग हैं उनके हृदय में शोक का सागर है। इस सागर को खाली करने में कितना समय लगता है, पर ये जो हरि कथा है वो एक ऐसा वो एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा शोक अर्णव शोषणम, शोषणम मतलब तुरंत सूख जाता है वो, शोकों का सागर सूख जाता है। थोड़े दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, एक माताजी से मिला, उनका 12 साल का एक लड़का था, दोनों स्कूटर में जा रहे थे, वो पीछे बैठा था, ये सामने बैठी थी, और पीछे से ट्रक, उनकी गलती नहीं थी, पीछे से गाड़ी आया और मार दिया, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों गिर गए, वो जीवित है, ये शरीर छोड़ दिया बच्चे ने, 12 साल का लड़का, इकलौता लड़का, अगस्त में हुआ ये, और अभी फरवरी आ गया, उनके घर में पूरा उस बच्चे का ही चित्र लगाया हुआ है। तो उनके पड़ोसी जो है भक्त हैं वो, तो मुझको मिला है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, जैसा उस बच्चे का नाम ले कॉन्स्टेंटली आंसू बह रहे थे उसके, 6 महीने से यही परिस्थिति है उनकी, बोल नहीं पा रही हो, और उसके लिए उन्होंने मिठाई खाना छोड़ दिया, बोले उसको जो अच्छा लगता था वो मैं नहीं खाऊं, खाती हूं तो मुझे वो याद आता है, कॉन्स्टेंटली 6 महीने से रोते बैठी हुई है, ठीक से खाती नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, हमेशा वो बच्चे का याद कर रही, इतना पानी कहां से आता है, क्योंकि पूरा सागर भरा हुआ अंदर शोक का। तो भगवान भी गीता में कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, उसका भी वैसे ही हुआ था, शोक प्रकट कर रहा था। तो अशोचानन अशोचस्तम प्रज्ञा गतासून अगतासून न अनुशोचंति पंडिता। एक तो सिद्धांत, पर हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले गए तो विष्णुप्रिया लगातार रोती रही। जिस दिन नित्यानंद प्रभु चले गए, हड़ाई पंडित और पद्मावती जीवन रह नहीं पाए वो, पर वो शोक जो है उच्च कोटि का विप्रलंब आनंद है वो। पर वही विकृत प्रतिबिंब इस दुनिया में हम देखते हैं, बहुत दुख पहुंचाता है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें केवल दुख है। दुख या सुख भगवान के संबंध में दोनों एक प्रकार का समाधि है, आनंद है, बहुत आनंद है उसमें। क्योंकि विप्रलंब में जब स्मरण कर रहे हो तो स्मरण जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान की क्या बोलते हैं सानिध्य आप प्राप्त किए हो। पर इस शरीर में है भी और नहीं भी दोनों खत्म होने ही वाला है, दोनों असत्य है, केवल शोक बढ़ाता है बस। तो शोक आरणव, कितने लोग गुजर गए, मां गुजर गए, बाप गुजर गए, ये गुजर गए, हो गया ये, खो गया मेरा धन, खो गया एक कुछ, सब मिला के अगर एक साथ डालेंगे शोक आरणव, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, अपमान हो गया, जब भी याद आता है तो गुस्सा निकलता है, धुआं निकलता है या आंसू निकलता है, शोकारणव। तदेव शोकारणव शोषणम नृणाम, इसके बारे में निर्लक्ष, मतलब या क्या बोलते हैं इंडिफरेंट, उसकी ज्यादा उसको चिंता क्यों, क्योंकि तदेव रम्यम रुचिरम मनम मनसो महोत्सवम, ये आनंद होने के कारण ये जो है कुछ असर नहीं करता बल्कि सूख जाता है वो। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशः अनुगीयते। यद उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब जो सर्व प्रसिद्ध भगवान है, पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है भगवान, कोई भारत में प्रसिद्ध है पर अमेरिका में जाके पूछो तुम्हें मालूम है सरदार पटेल कौन है, बोला मुझे क्या मालूम, क्या नाम हो, किस चीज का नाम है वो, उनको नहीं मालूम होगा कोई सरदार, उनको क्या मालूम। अमेरिका का कोई हीरो आके मैं अगर आप में पूछूंगा आपको मालूम है बुरलो कौन है, बुरलो वो कौन है, क्या चीज होता है वो, खाने का चीज होता है क्या, पैवलो कौन है, पैवलो वो क्या होता है, वहां का हीरो है वो, प्रसिद्ध है पूरे रशिया में प्रसिद्ध है पैवलो, कार्पो कुछ लोगों को मालूम होगा, जो चेस खेलते हैं मालूम, मालूम है कार्पो वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर, जो चेस खेलते हैं उनको मालूम है, फुटबॉल वाले को नहीं मालूम, पूरे दुनिया में मालूम है तो केवल चेस खेलने वालों, अब वो बहुत गिने चुने लोग होते, दूसरों को सो जाते हैं चेस को देख के, हम जैसे भागवत को देख के सोते। पर भगवान जो हैं नास्तिकों के बीच भी प्रसिद्ध है, क्योंकि नास्तिकों का पूरा जीवन जाता है भगवान नहीं है साबित करने के लिए, आस्तिक और नास्तिक दोनों में भगवान प्रसिद्ध है। आस्तिक लोग भगवान की शरण लेने के लिए जीवन को लगाते हैं और नास्तिक लोग भगवान नहीं है साबित करने के लिए पूरा जीवन कर देते हैं और बाद में भगवान उनको अंदर ले ले, चल सो जा, बीच हो गया, एक थप्पड़ मारते हैं, मृत्यु का मृत्यु सर्वहरश्चाहम कालोस्मि। सिर्फ एक अंतर है नास्तिक और आस्तिक में, एक मृत्यु से पहले सर नीचे करके ऐसा गिरता है और जो नास्तिक है पीठ के बल नीचे गिरता है मर के। दोनों अंत में प्रणाम करते हैं भगवान को, एक सीधा करता है दूसरा टेढ़ा करता है। राम नाम सत्य है तब बोलते हैं। अब तक झूठे जी जीवन जिया, मरने के बाद मर गया तू, पर सुन ले अभी कम से कम राम नाम सत्य है, अगले जन्म में कम से कम राम नाम ले ले तू। अभी तो मर गया, अभी मुंह में तेरी चिंगारी डालेंगे, आग लगेगी मूर्ख। तद उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक मतलब ऑल फेमस पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हर जगह प्रभुपाद अलग तरीके से उसको, आचार्यों ने अलग, थोड़ा अलग तरीके से उसका ये किया है, वर्णन किया है या परिभाषा दी है। यदुत्तम श्लोक यश, उनके यश अनुगीयते, गीयते मतलब गाना, अनुगीयते मतलब परंपरागत उसका गुणगान करना। तो इस तरह से ये नित्यानंद त्रयोदशी के लिए इंट्रोडक्शन था। गुणोदयम, और जैसे आप बोलेंगे प्रभु जी आपने तो भागवत के बारे में बोला, पर हमको तो आप सीसी और चैतन्य भागवत सुना रहे हैं। चैतन्य भागवत है वो भी। ओरे मूढ़ लोग को सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिवे सकल, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास। सौभाग्यवश उसका मराठी अनुवाद आ गया है। इसको पढ़ो और इसका रस लो। तो आने वाले दो दिन, कल कुछ लीला मतलब डायरेक्टली कार्यकलाप होगा, और परसों लीला में थोड़ा प्रवेश करेंगे। तो परसों हम लोग, आज तक हमने सुना है जगाई माधाई का उद्धार हुआ, पर उद्धार के बाद क्या हुआ ये ज्यादातर हमने ध्यान नहीं दिया है। तो उसमें थोड़ा प्रवेश करेंगे, जिसमें डायरेक्टली जैसा अर्जुन के मुख से जब कृष्ण के भगवत गीता का गुणगान सुनेंगे तो उसमें अलग रस होता है, क्योंकि डायरेक्टली उसने सुना है। इसी तरह से जगाई माधाई के मुख से अगर नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की गुणगान सुनेंगे, तब हमको समझ में आएगा नित्यानंद प्रभु की महिमा क्या है। और व्यासदेव के मुख से सुनेंगे चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, तो ये भागवत से अभिन्न है। चैतन्य भागवत जो है श्रीमद् भागवत, क्यों? भागवत के स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में, भागवत की शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की पूरी जीवनी डाली है, क्योंकि ये व्यक्ति भागवत, पुस्तक भागवत पढ़ने से पहले व्यक्ति भागवत के जीवन को समझो, उनके जीवन को, उनके जीवन के लीलाओं को, उनके गुणों का आस्वादन करो, प्रवेश करो उसमें, तब भागवत आसानी से समझेगा। बड़े कृपा पूर्वक कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु, और अभी 500, अभी भी 500 साल हुआ बस, प्रभुपाद बोलते थे अभी बस जस्ट 500 ईयर्स जस्ट, जस्ट क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हो, वो देखेंगे तो फिर ये अभी अभी है, 500 साल कुछ भी नहीं है। तो उसका हम आस्वादन करेंगे, आप सबको आमंत्रित। पर नित्यानंद त्रयोदशी में प्रवेश करना है लीला में, कल शाम को आना अनिवार्य है। कल शाम को हम लोग गौरनीता यहां से निकलेंगे और हरिओम नगर का, हरिओम नगर में थोड़ा कृपा देंगे और उत्सव होगा सुंदर, कृपया सब लोग आइए और वो कृपा कटाक्ष डालेंगे सबको, उनकी कृपा कटाक्ष होगी। यत् चैतन्य कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते विश्वं पूर्ण सुखायते विधिमहेन्द्रादिश्च कीटायते यद कारुण्य कटाक्ष वैभववताम तम गौरमेव स्तुमः। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिसको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का कृपा कटाक्ष पड़ गया उसका क्या होता है, कैवल्यम नरकायते, मुक्ति जिसके पीछे ज्ञानी लोग बहुनाम जन्म के जन्मों तक तपस्या करते हैं नरक लगता है। जिसको भक्ति रस अमृत का सिंधु मिल गया मुक्ति उसके लिए नरक लगता है। पजेगा तुला नाको छी। षड गोस्वामियों ने मुक्ति के शेर से हमें बचा दिया। षड गोस्वामी अष्टक में है ना, वो वाक्य कौन सा है, कैवल्य निस्तार कहो, कैवल्य के से निस्तार, मुक्ति से मुक्ति दिलाया हमको। जिसको महाप्रभु की कृपा कटाक्ष मिल गई मुक्ति से उसको मुक्ति मिली। धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव धर्म में सबसे श्रेष्ठ है मुक्ति, क्योंकि मुक्ति मतलब भक्ति नष्ट हो गया। क्यों, मुक्ति मतलब भगवान में लीन होना। अरे लीन हो गए तो सेवा क्या करोगे, भक्ति रस के अमृत का सिंधु में कैसे आस्वादन करोगे। कैवल्यम नरकायते, जो कैवल्य के पीछे लोग भागते हैं नरक लगता है महाप्रभु के अनुयायियों को। त्रिदशपुर स्वर्गलोक आकाश पुष्पायते, मृग तृष्णा जैसे, अरे वो क्षण भंगुर है, नाम के वास्ते उसमें कुछ आनंद नहीं है, टेंशन है। इंद्र को भी हमेशा टेंशन, वहां जाके हमको क्यों नहीं टेंशन होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग में जो निवास करते हैं ना उनको हमेशा दो टेंशन, एक असुर आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, असुर आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, असुर आ जाएंगे कब्जा कर लेंगे, और दूसरा पाप नष्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड में से क्रेडिट जा रहा है पैसा जा रहा है, जितना भोग कर रहे जा रहा है, छीणे पुण्य मर्ते लोक मिशन खत्म हो गया, अरे गया गेलो खत्म, वापस फिर बैंक में पैसा डालो। तो एक असुरों का भय और दूसरा क्रेडिट कार्ड खत्म हो रहा है, जितना खर्चा हो रहा है पैसा खत्म हो रहा है। पर यद गतवान अनिवर्तन्ते, तो जिसको वैकुंठ धाम का प्राप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं नवद्वीप धाम में, उनके लिए त्रिदशपुर आकाश पुष्प आए थे, इसमें कुछ नहीं है। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली, इंद्रियों को संयम करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, शौबरी मुनि, विश्वामित्र मुनि सालों तक इंद्रियों को पकड़ के रखे थे, फिर से पतन हो गया। पर जिसको महाप्रभु की कृपा मिल गई, जिस हद तक उसको प्रामाणिकता से उसको पकड़ के रखेगा, गौरनिता ने, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई माताई को एक ही चीज बोला उद्धार करने के बाद, बोले फिर से पाप नहीं करना, आर नारे बाप, उसे बोला बाप रे बाप नहीं करने का, कभी नहीं करेंगे हम लोग, बस बोले जब तक तू फिर से पाप नहीं करेगा तब तक ये कृपा रहेगी। तो दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, जी इंद्रियों को नष्ट वश कर पाना मुश्किल है, बड़ी आसानी से वो सपेरा लोग होते हैं, देखिए सांप को पकड़ के ऐसा खेलते रहते, बच्चे भी खेलते हैं सांप के साथ, क्यों, क्योंकि सांप का विष का वो, अगर विष का जो सांप क्यों डरावना है, क्योंकि विष है उसके दांत में, वो दांतों वाला विष निकाल दो ना, फिर वो रबर का जो सांप है और असली सांप है कुछ अंतर नहीं है, ठंडी लगता है ऐसा सा घुमा के शिवजी जैसा हम भी पकड़ के घूम सकते हैं। पर दांत नहीं निकला, देख के बेहोश हो जाता आदमी। इसी तरह से जिसको कृपा कटाक्ष नहीं मिली महाप्रभु की, परम दृष्टवा नहीं मिला है, उसके लिए जीवन भर डर है, कभी भी मैं गिर सकता हूं, कभी भी हो सकता, कभी भी काट सकता है ये सांप, सांप पकड़ के रखा पता नहीं कब काट लेगा, विष अभी गया नहीं है, तो भौतिक इच्छाएं गई नहीं है, पर महाप्रभु ने जगाए बधाए उद्धार के साथ ऐसा प्रेम भर दिया उनके हृदय में, पूरा पैक हो गया, जगह ही नहीं है माया के लिए, प्रेम से भर दिया। मार खे प्रेम दे, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्राय थे विश्वम पूर्ण सुखाय थे। कहीं भी नरक में डालो, कहां भी डालो, जहां तक महाप्रभु की सेवा हो रही है, विश्वम पूर्ण सुखाय थे। विधि महेंद्र आदिश्च, विधि का पोष चाहिए क्या? ब्रह्मा जी का पोष चाहिए, इंद्र का पोष चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम। मक्खी का पोष चाहिए, मच्छर बनना है तुमको? अगर हमको किसी को बोले मक्खी बनना है, छी, ऐसे बोलते महाप्रभु के अनुयायी। ब्रह्मा बनना है, शिव जी बनना है, छी, इंद्र बनना है, नो, क्या करना है? आपकी सेवा करना है प्रभु। कीट जन्म हो यथा तू या दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं। आपसे बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जी का जन्म नहीं चाहिए, आपसे उन्मुख होकर कीड़े का जन्म चलेगा, मतलब नरक जाने के लिए तैयार, नारकीय स्थिति तैयार। यद कारुण्य कटाक्ष वैभव वताम तम गौरमे वस्तुमा। तो कल वो अपना कटाक्ष फैलाने वाले कीर्तन करते हुए, कृपया जरूर भाग लीजिएगा। और परसों सुबह और शाम नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ दिन इस लीला पर थोड़ा विचार करें। जय श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री निताय गौरचंद्र की जय, शूल प्रभुपाद की जय। अभी 10 मिनट कीर्तन करेंगे, 8 मिनट, और उसके बाद सब लोग कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा।